ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्चस्तरीय रावल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सरकार का निर्णय। काभरे पलांचोक के नमोबुद्ध में हुई बस दुर्घटना, 8 लोगों की मौत, 16 घायल। ट्रेड यूनियन समाप्त करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आदेश जारी रखने से सर्वोच्च अदालत का इनकार। परराष्ट्र मंत्री शशि खनाल चीन दौरे पर जाएंगे परसों। और भारत की राजधानी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। काभरे पलांचोक की नमोबुद्ध नगर पालिका 2 स्थित बुचाकोट के सेल्फी डांडा में आज हुई बस दुर्घटना में मृत 8 लोगों में से 4 की पहचान हो गई है। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार मृतकों में रोशी गांव पालिका 7 की 34 वर्षीय फूलमाया तामांग, रोशी 6 के 75 वर्षीय इंद्र बहादुर झांकरी, 60 वर्षीय प्यारी माया तामांग और दैलक निवासी 3 वर्षीय बम बहादुर भंडारी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार भंडारी नेपाली सेना में अमलदार पद पर कार्यरत थे। पनेपा से रोशी गांव पालिका 6 सुंगुरे जा रही BA2K8398 नंबर की यात्री बस आज दोपहर बीपी राजमार्ग अंतर्गत नमोबुद्ध 2 बुचाकोट की पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। दुर्घटना में 16 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज धूलीखेल अस्पताल में जारी है। सरकार ने संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल की अवधि आषाढ़ मासांत तक बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार असीम शाह के नेतृत्व में कार्यदल संविधान संशोधन की संबंधी बहस पत्र तैयार करने का काम कर रहा है। सिंह दरबार में आज हुई मंत्रिपरिषद बैठक ने सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्चस्तरीय रावल आयोग की 2052 की रिपोर्ट लागू करने के लिए भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय को निर्देश देने का भी निर्णय लिया है। बैठक ने लेखामान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर सिंधु पालचोक के रमेश कुमार धिताल को नियुक्त करने का फैसला किया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। सुस्ता क्षेत्र में भारतीय एसएसबी के प्रवेश संबंधी प्रश्न पर मंत्री पोखरेल ने कहा कि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा में स्थानीय नेपाली नागरिक वर्षों से सक्रिय हैं और इस विषय पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक कूटनीतिक पहल की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नेपाल भारत सीमा से जुड़े विवादों का समाधान संवाद और कूटनीतिक माध्यम से किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने विनियोजन विधेयक 2083 और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा कि पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए अर्थ मंत्रालय ने अपने कई अधिकार संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चालू खर्च को नियंत्रित रखते हुए विकास एवं पूंजीगत खर्च बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। विधेयक पर हुई चर्चा में सांसदों ने बजट में चालू और विकास खर्च के बीच संतुलन की कमी, स्थानीय तहों के अनुदान में कटौती, रोजगार सृजन की उपेक्षा और शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजट न होने की बात उठाई। कुछ सांसदों ने कहा कि बजट विकास की बजाय ऋण और वेतन भत्तों पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने विभिन्न मंत्रालयों के बजट शीर्षकों पर विस्तृत चर्चा के लिए 1 से 4 आषाढ़ तक का समय निर्धारित किया है। बैठक में एमाले के प्रमुख सचेतक एन बहादुर महर ने नवलपरासी के सुस्ता क्षेत्र में भारतीय एसएसपी द्वारा कथित गतिविधियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। वहीं सांसद मदन कुमार भंडारी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 1 आषाढ़ को सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजट पर सामान्य चर्चा हुई। चर्चा में सांसदों ने कहा कि स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार दिए बिना विकास को गति नहीं मिल सकती। उन्होंने बजट में नए कार्यक्रमों की कमी, घोषित योजनाओं के लिए संसाधनों की अनिश्चितता, लाभ में चल रही नेपाल टेलीकॉम के शेयर बेचने के प्रस्ताव और युवाओं के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अभाव पर चिंता व्यक्त की। सांसदों का कहना था कि बजट मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को संबोधित करता है। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि बजट में गरीब वर्ग, कर्णाली प्रदेश, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की पर्याप्त उपेक्षा की गई है और युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई है। बैठक में समसामयिक विषयों पर भी सरकार का ध्यान पृष्ठ किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की ओर से महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने राष्ट्रीय समावेशी आयोग की आर्थिक वर्ष 2081-82 की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 1 आषाढ़ को दोपहर 1:15 बजे होगी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल चीन के विदेश मंत्री वांग यी के निमंत्रण पर 4 दिवसीय चीन दौरे पर आगामी 31 जेठ को बीजिंग के लिए रवाना होंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार चीन दौरे के दौरान मंत्री खनाल अपने समकक्ष वांग यी के साथ नेपाल चीन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के विषय में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अतिरिक्त वे चीन के उच्च अधिकारियों के साथ भी अलग अलग मुलाकात और वार्ता करेंगे। देश में विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से बीजिंग स्थित नेपाली दूतावास द्वारा आयोजित निवेश सम्मेलन में मंत्री खनाल भाग लेंगे। साथ ही वे चीनी उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मंत्री खनाल के आगामी 3 आषाढ़ को स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। कैलाली की गोदावरी में नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के DSP योगेंद्र तिमिल सिन्हा के अनुसार महेश्वरी धमला और कल्पना साउद आज सुबह जंगल में मशरूम खोजने गई थीं। इसी दौरान वे नदी के तेज बहाव में बह गईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोनों महिलाएं गोदावरी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 की निवासी थीं। ट्रेड यूनियन को खारिज करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम आदेश को जारी रखने से इनकार कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा व न्यायाधीश डॉ नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान और महेश शर्मा पोडेल की संवैधानिक पीठ ने इसी जेठ 20 गते से शुरू हुई सुनवाई आज समाप्त होने के बाद अदालत ने पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को जारी रखने से मना कर दिया। अदालत के इस आदेश के साथ ही ट्रेड यूनियन को खारिज करने के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार के लिए रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय ने अध्ययन वीजा सिफारिश प्रक्रिया में संदिग्ध दस्तावेज और फर्जी रसीदों के उपयोग की आशंका के बाद विस्तृत जांच पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र में कहा है कि विदेशी विद्यार्थियों के लिए जारी अध्ययन वीजा सिफारिश से संबंधित दस्तावेजों में गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि उसके समक्ष प्रस्तुत कुछ दस्तावेज और रसीदें संदिग्ध और फर्जी प्रकृति की लग रही हैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविता गौतम ने मंत्रियों से सरकार की नई नीतियों से संबंधित कानूनों के मसौदे तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। आज आगामी आर्थिक वर्ष में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की तैयारी के संबंध में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खटकराज पौडेल तथा कृषि, वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी के साथ चर्चा करते हुए मंत्री गौतम ने कहा कि नई सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के बाद लागू की गई नीतियों के अनुरूप संबंधित मंत्रालयों को कानून निर्माण की तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में शुक्रवार आज तड़के 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के हवाले से BBC ने बताया है कि हादसे में मारे गए लोगों में 22 साल का एक लड़का और 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग लगने की इस घटना के बारे में तड़के 2:24 पर PCI कॉल की गई थी। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत धुएं से भर गई, जिसमें फंसे 8 लोगों को निकालकर एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। आग ने पास में पार्क किए गए एक टू व्हीलर को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे को लेकर आगे की जांच जारी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि जांच तथा संरक्षण संबंधी उच्चस्तरीय रावल आयोग की रिपोर्ट लागू करने का सरकार का निर्णय। काभरे पलांचोक के नमोबुद्ध में हुई बस दुर्घटना, 8 लोगों की मौत, 16 घायल। ट्रेड यूनियन समाप्त करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आदेश जारी रखने से सर्वोच्च अदालत का इनकार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल चीन दौरे पर जाएंगे परसों। और भारत की राजधानी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 3 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।